आज है 24 जनवरी दिन मंगलवार, स्वीकार कीजिए राजेश जोशी का नमस्कार। अमेरिका के जवाब में चीन ने कहा, दक्षिण चीन सागर पर दावा छोड़ने का सवाल ही नहीं। अगर विवाद बढ़ा तो भारत पर क्या असर पड़ेगा?
कि अगर ये जो रिलेशनशिप है ये कॉन्फ्लिक्ट में एस्केलेट होती है, वहाँ पर इंस्टेबिलिटी आती है, तो उससे रीजनल इकोनॉमी पर असर पड़ेगा और इंडियन इकोनॉमी पर असर पड़ेगा।
उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव ने चुनाव प्रचार का बिगुल बजाया, जानेंगे कैसा था वहाँ का रंग। और
अगर तली तू बारमान
आज छोटा हुआ तो क्या, इरादे तो बुलंद हैं। इंतजार कीजिए इन सब का, लेकिन सबसे पहले हमेशा की तरह विश्व समाचार।
बीबीसी समाचार मानसी दास से। डोनाल्ड ट्रंप प्रशासन के दक्षिणी चीन सागर में अंतर्राष्ट्रीय इलाकों को अमेरिका के सुरक्षा देने के बयान के बाद चीन ने कहा है कि वो इस इलाके में अपना अधिकार हासिल करने से पीछे नहीं हटेगा। चीनी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ख्वा चुनयिंग ने कहा है कि दक्षिणी चीन सागर इलाके में स्थित द्वीपों और आसपास के इलाकों पर चीन का निर्विवाद अधिकार है और वो अपने अधिकारों और हितों की रक्षा करेगा। ट्रंप के एक अहम एशिया प्रशांत व्यापार समझौते को रद्द करने के फैसले के बाद चीन ने मुक्त व्यापार का समर्थन किया है और कहा है कि व्यापार समझौतों को लेकर लड़ने से किसी की जीत नहीं हो सकती। इससे पहले डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था कि ट्रांस पैसिफिक पार्टनरशिप यानी TPP अमेरिका के लिए एक आपदा की तरह है। ट्रांस पैसिफिक पार्टनरशिप समझौते को लेकर हुई बातचीत में चीन को शामिल नहीं किया गया था। हालांकि चीनी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ख्वा चुनयिंग ने मुक्त व्यापार के मुद्दे पर चीन के समर्थन की बात की और कहा, जैसा कि सभी लोग देख सकते हैं, मौजूदा वैश्विक अर्थव्यवस्था अभी भी बेहद कमजोर है और व्यापार और निवेश में कमी आई है। वैश्विक अर्थव्यवस्था में विकास के लिए मुक्त अर्थव्यवस्था का निर्माण हो सके, इसके लिए एशिया प्रशांत इलाका अपना महत्वपूर्ण योगदान देता रहेगा। हमें लगता है कि मौजूदा समय में चाहे कुछ भी हो जाए, सभी को एक साथ आना चाहिए और साथ मिलकर मुक्त, सम्मिलित और लगातार विकास के लिए आगे बढ़ना चाहिए। ये थी चीनी विदेश मंत्रालय की प्रवक्ता ख्वा चुनयिंग के शब्द। आप सुन रहे हैं BBC समाचार। ब्रिटेन के सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि ब्रिटेन के यूरोपियन यूनियन से बाहर निकलने की प्रक्रिया शुरू करने से पहले इस मामले में संसद में मतदान होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में सरकार की अपील को खारिज कर दिया है। कोर्ट का कहना है कि यूरोपियन यूनियन के बाहर जाने का सीधा असर ब्रिटेन के कानून पर होगा और इसलिए इस मामले में संसद को भी अपनी राय देने का हक है। हालांकि मामले की सुनवाई करते हुए जजों ने कहा है कि सरकार को इस बारे में स्कॉटलैंड, वेल्स और उत्तरी आयरलैंड की संसद से मंजूरी लेने की जरूरत नहीं है। उधर ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कार्यालय ने कहा है कि वो इस मामले में जल्द ही यूरोपियन यूनियन से बाहर जाने की प्रक्रिया को योजनाबद्ध तरीके से मार्च से पहले शुरू करने के लिए एक कानून लाने जा रहे हैं, जिसके अंतर्गत प्रत्येक सांसद को मतदान का अधिकार मिलेगा। इस मुहिम को शुरू करने वाले व्यवसायी गिना मिलर का कहना है कि कोर्ट के इस आदेश ने यह बता दिया है कि संसद ही सार्वभौम है। सीरिया में संघर्ष विराम पर निगरानी रखने के लिए एक व्यवस्था बनाने पर रूस, ईरान और तुर्की राजी हो गए हैं। कजाकिस्तान में दो दिन चले शांतिवार्ता के बाद इस बारे में एक संयुक्त घोषणा पत्र जारी किया गया है। सीरियाई सरकार और विद्रोही दलों के बीच इस वार्ता का आयोजन करने वालों का कहना है कि 6 साल पुराने इस मुद्दे का कोई सैन्य समाधान नहीं है। शांतिवार्ता के बाद सीरियाई सरकार के प्रतिनिधि बशर अल जाफरी ने विद्रोही समूहों से अपील की कि वो हथियार डाल दें और इस खूनी जंग को बंद करें। उन्होंने कहा कि सीरियाई सरकार इस युद्ध को खत्म करने के लिए प्रतिबद्ध है।
Whatever it takes us, we will do it to rescue our own country and our own people.
चाहे हमें कुछ भी करना पड़े, हम अपने देश को बचाने और अपने लोगों को बचाने की पूरी कोशिश करेंगे, लेकिन एक खास रूपरेखा के अंतर्गत, खास एजेंडे और मुलाकातों के आधार पर ही हम ऐसा करेंगे। हम अंधों की तरह कोई काम नहीं करेंगे। हम इस बारे में पूरी रूपरेखा पर विस्तृत विचार करने के बाद ही यह काम करेंगे। ये थे सीरिया शांतिवार्ता में हिस्सा लेने वाले सीरियाई सरकार के प्रतिनिधि बशर अल जाफरी। सर्वे ऑफ इंडिया का कहना है कि 2 साल पहले आए नेपाल भूकंप के बाद माउंट एवरेस्ट में क्या कुछ बदलाव आए हैं, इसे जानने के लिए वह दोबारा पर्वत शिखर की ऊंचाई मापेगा। BBC समाचार।
ये बीबीसी हिंदी सेवा है और आप सुन रहे हैं कार्यक्रम दिन भर। आज आपके साथ हूं मैं राजेश जोशी। आज संझा की इस घड़ी जब आप अपने रेडियो से कान लगाए इस दुनिया का हाल जानने को बेताब हैं, तो दुनिया के दो बड़ी ताकतें यानी महाशक्तियां आंखें तरेरे एक दूसरे की ओर देख रही हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति का चुनाव जीतने के बाद एक ओर चीन के प्रति रुख कड़ा करना, और वहीं अमेरिकी विदेश मंत्री का कार्यकाल संभालने जा रहे रेक्स टिलरसन का कहना कि अमेरिका को दक्षिण चीन सागर में बनाए गए कृत्रिम टापुओं में घुसने से रोकना होगा। अब ये बात ठंडी पड़ने की बजाय और गर्म होती दिख रही है। चीन ने कह दिया है कि दक्षिण चीन सागर से दावा छोड़ने का सवाल ही नहीं उठता। सुनिए चीनी विदेश मंत्रालय की प्रवक्ता हुआ चुनयांग ने क्या कहा। उन्होंने यह बयान चीनी में दिया।
中国在南海问题上的立场是明确和一贯的，那么我们在南海的行动也是正当合理的。
हुआ चुनयांग कह रही थी कि दक्षिण चीन सागर के मामले में चीन की नीति स्पष्ट है और बदली नहीं है। दक्षिण चीन सागर में हमारी गतिविधियां उचित हैं। दूसरे देशों में क्या बदलाव होते हैं, वो क्या करना चाहते हैं, क्या कहते हैं, इससे चीन के नज़रिए पर कोई फर्क नहीं पड़ता। दक्षिणी चीन सागर में अपनी संप्रभुता और सागर के अधिकारों की हिफाजत चीन हर कीमत पर करेगा। चीन ने अमरीका से गुजारिश भी की है कि वो तथ्यों की कद्र करे और ऐसा कुछ ना कहे या ना करे जिससे दक्षिण चीन सागर इलाके में शांति भंग हो या अस्थिरता पैदा हो जाए। यानी अमरीका कहता है दक्षिण चीन सागर इलाके में वो दुनिया की तरफ से पहरेदारी करेगा, पर चीन कहता है कि अमरीका चाहे जो बोले उस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये दुनिया जा कहाँ रही है? सवाल मैंने किया अमरीका भारत चीन संबंधों के विशेषज्ञ और ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन के प्रोफेसर हर्ष पंत से।
देखिए, ऐसा लग रहा है कि अगर ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन का रवैया ऐसा ही रहा तो हमको पहली जो कॉन्फ्लिक्ट है वो ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन और चीन के बीच में वो साउथ चाइना सी पर होने की काफ़ी संभावना है, क्योंकि दोनों ही ने मैक्सिमलिस्ट पोजिशन इस समय ले ली हैं। लेकिन मुझे लगता है जो वो कहते आए हैं ट्रंप जब अपनी इलेक्शन कैंपेन में, और जिस तरह से उनके सेक्रेटरी ऑफ स्टेट का भी कुछ दिन पहले बयान आया था, संकेत यही है कि एक हार्डलाइन अप्रोच साउथ चाइना सी की तरफ अमरीका लेगा।
जब कोई नया नया उम्मीदवार जीतता है, राष्ट्रपति प्रधानमंत्री बनता है, तो कई बार वो उन चीज़ों को उसी वेग से कहता है जब वो अपने चुनाव के प्रचार के दौरान जिस तरह की बातें करते हैं।
नहीं, नीति में डेफिनेट जो उनकी चाइना पॉलिसी है, आप अगर पूरी तरह उसको देखें तो इलेक्शन कैंपेन में भी उन्होंने काफ़ी हार्डलाइन लिया था। पूरी जो एक पॉलिसी थी उसमें चाइना की तरफ जो अप्रोच था, चाहे वो ट्रेड हो और चाहे वो सिक्योरिटी हो, दोनों इश्यूज पर उन्होंने हार्डलाइन एक अप्रोच अपना लिया था कि अगर चाइना डिलीवर नहीं करेगा तो अमरीका रिस्पॉन्ड करेगा। ये पोजिशंस काफ़ी डिफरेंट हैं जो कि पहले प्रीवियस एडमिनिस्ट्रेशन ने ली हैं। लेकिन ये जो आप बड़ी बात कह रहे हैं कि जो इनिशियल मंथ्स होते हैं, शुरू के मंथ महीने होते हैं, साल होता है, उसमें कहीं पर मुझे लगता है कि पॉलिसी बदल भी जाती है और जनरली बदलती है। अगर आप याद करें तो ओबामा साहब जब प्रेसिडेंट बने थे तो उस समय बड़ा जिक्र हुआ करता था G2 का, कि अब एक G2 बन जाएगा, चीन और अमेरिका अब साथ साथ मैनेजमेंट करेंगे ग्लोबल अफेयर्स का।
तो वो G2 कहीं नहीं बना।
उसी तरह मुझे ऐसा लगता है कि जो ये अभी एक मैक्सिमलिस्ट पोजिशन इस इशू पर ली गई हैं, वो भी धीरे धीरे एक नेगोशिएटेड सेटलमेंट की तरफ बढ़ेंगी जब उनको पता लगेगा कि इस कॉन्फ्रंटेशन के जो कॉन्सिक्वेंसेज हैं वो कहां तक जा सकते हैं।
लेकिन ये भी देखना चाहिए कि चीन जो है वो पीछे कदम हटाता नहीं दिख रहा है अमरीका की इस तीखे तेवर जो हो रहे हैं। अमरीका और चीन दो बड़ी ताकतें आपस में आंखें तरेरे एक दूसरे को देख रही हैं। हिंदुस्तान को ये सूट करता है कि अमेरिका का बहुत तीखा रवैया है, या हिंदुस्तान को डरना इस बात से चाहिए या सतर्क कम से कम हो जाना चाहिए कि इस इलाके में कुछ ऐसी बात ना हो जो भारत पर भी नुकसान जिसका हो सके?
देखिए, डेफिनेटली जहां तक हिंदुस्तान का सवाल है, इसमें दो इश्यूज हैं। एक ये है कि अगर जिस तरह के रिलेशंस हिंदुस्तान और चीन के इस समय रहे हैं कुछ महीनों से, अगर उस समय अमरीका चीन पर प्रेशर बनाता है तो हिंदुस्तान को ज्यादा डिप्लोमेटिक स्पेस मिलती है अपनी डिप्लोमेसी को कंडक्ट करने के लिए। लेकिन दूसरी तरफ जो आप बात कह रहे हैं कि अगर ये जो रिलेशनशिप है ये कॉन्फ्लिक्ट में एस्केलेट होती है, वहां पर इंस्टेबिलिटी आती है, तो उससे रीजनल इकोनॉमी पर असर पड़ेगा और इंडियन इकोनॉमी पर असर पड़ेगा, क्योंकि जो सीलेंस ऑफ कम्युनिकेशन है वहां से जाती है, उसके वहां से हमारा ट्रेड चलता है, तो उस ट्रेड पर, उस जो ग्लोबलाइजेशन है उसकी फोर्सेस पर ब्रॉडर इंपैक्ट पड़ेगा और उससे रीजन को और इंडिया को काफी नुकसान होगा।
चीन और अमेरिका के बीच तनाव का भारत पर असर, बता रहे थे ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन के प्रोफेसर हर्ष पंत।
खबर सच है अगर बीबीसी पर है।
ये बीबीसी हिंदी सेवा है और आप सुन रहे हैं कार्यक्रम दिनभर। मैं हूं राजेश जोशी। आइए लौटते हैं हिंदुस्तान की ओर, जहां छत्तीसगढ़ में सामाजिक कार्यकर्ता और शोधकर्ता बेला भाटिया के घर सोमवार को किए गए प्रदर्शन के बाद अब सोशल मीडिया पर बहस शुरू हो चुकी है। सामाजिक कार्यकर्ताओं ने बस्तर के आईजी पुलिस शिवराम प्रसाद कल्लूरी पर आरोप लगाया है कि उन्होंने कई सामाजिक कार्यकर्ताओं द्वारा बेला भाटिया के संबंध में किए गए मैसेज के जवाब में कथित रूप से संदेश भेजे हैं जिन पर उन्हें एतराज है। इसके उलट आईजी का दावा है कि उन्हें व्यक्तिगत और अनुचित संदेश भेजे गए हैं। रायपुर से आलोक पुतुल की रिपोर्ट।
बस्तर में पिछले कई सालों से आदिवासियों को कानूनी सहायता उपलब्ध कराने वाली एडवोकेट ईशा खंडेलवाल इस बात से चकित हैं कि पुलिस का कोई बड़ा अधिकारी किसी महिला को इस तरह के संदेश कैसे भेज सकता है। बीते कुछ सालों से बस्तर के आदिवासियों के बीच काम कर रही सामाजिक कार्यकर्ता बेला भाटिया को कुछ अज्ञात लोगों ने सोमवार को बस्तर छोड़ देने की धमकी दी थी और ऐसा नहीं करने पर अंजाम भुगतने की चेतावनी दी गई थी। ईशा खंडेलवाल का दावा है कि उन्होंने सामाजिक कार्यकर्ता बेला भाटिया को सुरक्षा मुहैया कराने को लेकर बस्तर के आईजी पुलिस शिवराम प्रसाद कल्लूरी को एक संदेश भेजा था, जिसके जवाब में शिवराम प्रसाद कल्लूरी ने अपने सेल फोन से उन्हें कथित रूप से अश्लील और अभद्र टिप्पणी भेजी। ऐसा ही आरोप कुछ दूसरी महिला वकीलों का भी है।
बेशर्मी तो है, आपको इज्जत नहीं है औरतों की, बट ये भी है कि उसको डर नहीं है कि वो कुछ भी बोलेंगे, वो खुलेआम कुछ भी करेंगे। मतलब उन्होंने किसी को बोला भी था इनफैक्ट कि आपको जो करना है कर लो, यहाँ कोई अंतर नहीं पड़ेगा, आपको जितना बाहर ये सारी चीजें मैसेज करने, जो भी प्रेशर बनाने की कोशिश करनी है, मुझसे कोई असर नहीं होगा। तो एक वो इम्प्यूनिटी भी है कि मैं कुछ भी बोलूंगा, मतलब ये जो भाषा है ये उनका पावर दिखा रहा है।
छत्तीसगढ़ में विभिन्न सामाजिक संगठनों के समूह छत्तीसगढ़ बचाओ आंदोलन ने कहा है कि उनका संगठन ऐसे मामलों में कानूनी कार्रवाई पर विचार कर रहा है। छत्तीसगढ़ बचाओ आंदोलन के आलोक शुक्ला ने कहा,
बस्तर में सुरक्षा बलों के द्वारा जो गैरकानूनी कार्य लगातार किए जा रहे हैं, महिलाओं के ऊपर अत्याचार और बलात्कार की घटनाओं का अंजाम दिया जा रहा है, ऐसे मामले उजागर ना हो इसीलिए सामाजिक कार्यकर्ताओं के ऊपर लगातार हमले हो रहे हैं। बेला भाटिया के ऊपर कल का हमला इसका ताजा उदाहरण है। और सबसे बड़ी दुर्भाग्यजनक बात है कि जो बस्तर में बैठे हुए जो अधिकारी हैं, जो उच्च अधिकारी हैं, कल्लूरी जैसे अधिकारियों के द्वारा सामाजिक कार्यकर्ताओं के ऊपर अभद्र टिप्पणी और जो है गाली गलौज किए जा रहे हैं, ये बहुत ही निंदनीय है और ये खुद स्वयं पुलिस के द्वारा गैरकानूनी कार्यों के दायरे में आता है। राज्य सरकार को ऐसे अधिकारियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करनी चाहिए, उनके खिलाफ कड़े एक्शन लेना चाहिए।
लेकिन कथित रूप से अश्लील और अभद्र संदेश भेजने के आरोपों को लेकर बस्तर के आईजी पुलिस शिवराम प्रसाद कल्लूरी का कहना है कि उन्हें अश्लील और अभद्र संदेश भेजे गए हैं। इस बीच राज्य के मुख्यमंत्री रमन सिंह ने कहा है कि बेला भाटिया को सरकार ने पूरी सुरक्षा दी है और यह सुरक्षा आगे भी जारी रहेगी।
कोई भी हो, हमें अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, हम सहमत हो या वहाँ के स्थानीय लोग सहमत हो या ना हो वो अलग विषय है। पुलिस को डीजी को मैंने कहा है, आईजी से कहा है, वहाँ के एसपी को कहा है, कलेक्टर से कहा है कि ऐसा कोई कदम ना हो जिसमें किसी को एहसास हो कि उसके साथ अन्याय हो रहा है। और 15 पुलिस बल की वहाँ उनकी सुरक्षा के लिए और आगे के लिए भी वो सुरक्षित और कोई भी छत्तीसगढ़ में सुरक्षित रहे उसके लिए पर्याप्त सुरक्षण और संरक्षण हम देंगे।
फिलहाल सरकारी दावे, सोशल मीडिया और संदेशों में बेला भाटिया के बहाने छत्तीसगढ़ में माओवाद और पुलिस की कार्यप्रणाली को लेकर बहस जारी है। आरोप प्रत्यारोप और एक दूसरे को देख लेने की धमकियों के संदेश इधर से उधर हो रहे हैं। हालांकि इन मामलों में अभी तक किसी कानूनी कार्रवाई की दिशा में पहल की कोई खबर नहीं है। आलोक पुतुल, बीबीसी छत्तीसगढ़।
और इन आरोपों पर शिवराम प्रसाद कल्लूरी की राय जानने के लिए हमारी सहयोगी दिव्या आर्य ने उन्हें फोन किया और पूछा कि वो क्या कहेंगे।
सर, हमारी जानकारी में कई ऐसे मैसेजेस आए हैं जो आपके इसी नंबर से भेजे गए हैं कुछ महिला वकीलों और आंदोलनकारियों को, जिनमें काफी अभद्र भाषा का इस्तेमाल है, FU, स्टॉप बिचिंग, इस तरह की भाषा का इस्तेमाल किया गया है।
तो हमारा मोबाइल में भी बहुत सारे मैसेजेस है।
उन लोगों का कहना है और उन्होंने जो स्क्रीन ग्रैब्स हमें दिखाए हैं कि उन्होंने बेला भाटिया के ऊपर हमले के संदर्भ में आपसे मदद की अपील की और इस तरह के,
मैं भी रिपोर्ट कर रहा हूँ, उनको भी बोले रिपोर्ट करें।
तो ये संदेश आपने ही भेजे हैं, FU, स्टॉप बिचिंग?
कोई ऑफिसर ऐसा रिपोर्ट भेजता है क्या ऐसा मैसेज?
पर इसी नंबर से आए हैं जिस नंबर पे मेरी आपसे बात हो रही है।
क्या आप कोई साइबर एक्सपर्ट है?
नहीं, मैं तो सिर्फ जानना चाह रही हूँ कि ऐसा
साइबर एक्सपर्ट से हम जांच करवा रहे हैं ना, बहुत सारे मैसेजेस आ रहा है एक्टिविस्ट से, हम सब ऑफेंस रजिस्टर करके इन्वेस्टिगेट कर रहा है, हम कार्रवाई करेंगे इसमें।
उन एक्टिविस्ट के खिलाफ और जो आपकी तरफ से जवाब गए हैं?
अरे, एक साइड इन्फॉर्मेशन लेके क्यों बात करते, मैं बोल रहा हूँ ना।
तो वो मैसेजेस आपने भेजे हैं सर?
सब साइबर एक्सपर्ट्स इन्वेस्टिगेट कर रहा है, हम ऑफेंस दर्ज कर लिया, सबके खिलाफ हम कार्रवाई करेंगे, ठीक है।
पर आपकी तरफ से जो मैसेज गए हैं वो तो कह रहे हैं कि वो बहुत अभद्र है।
तुम साइबर एक्सपर्ट है क्या? साइबर एक्सपर्ट से बात कर रहे हो?
नहीं नहीं, मैं सिर्फ
ये बता रहा हूँ ना, हम साइबर एक्सपर्ट है।
मैं सिर्फ ये जानना चाह रही हूँ कि वो भेजे आपने कि नहीं।
हम मुकदमा रजिस्टर कर दिया, जांच चल रहा है, उसमें कार्रवाई करेंगे हम, इतना लिख लीजिए।
तुम साइबर एक्सपर्ट हो क्या? बस्तर के पुलिस निदेशक, पुलिस महानिदेशक शिवराज प्रसाद कल्लूरी ने बीबीसी की दिव्या आर्य से कहा। स्कॉलर और मानव अधिकार कार्यकर्ता बेला भाटिया के मुताबिक सोमवार दोपहर को करीब 30 लोगों ने जगदलपुर के पास परपा गांव में उनके घर पर प्रदर्शन किया और धमकियां दी। उनका कहना है कि बस्तर में सुरक्षा बलों ने 16 आदिवासी महिलाओं के साथ अभद्र व्यवहार और कथित तौर पर बलात्कार किया था, जिसकी खबर बस्तर के जंगलों से बाहर लाने में बेला भाटिया की बड़ी भूमिका थी। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने छत्तीसगढ़ सरकार को अपनी जाँच के बाद नोटिस भी भेजा था। हमारे सहयोगी विनीत खरे ने जगदलपुर में बेला भाटिया से फोन पर संपर्क किया और उनके बारे में भी जानकारी ली।
मैं एक एकेडमिक रही हूँ और साथ साथ में मैं एक सोशल वर्कर रही हूँ। mid-80s में मैं पूर्णकालीन कार्यकर्ता थी एक खेत मजदूर संगठन में साबरकांठा जिले गुजरात में। उसके बाद मैं 2 साल मैंने इराक और पैलेस्टाइन में मैं एक इंटरनेशनल पीस एंड ह्यूमन राइट्स टीम की मेंबर रही हूँ और वहाँ पे भी मैंने ये ह्यूमन राइट्स के इशू पर काम किया है। और उसके बाद फिर मैंने मेरा PhD शुरू किया जो बिहार के नक्सलवादी आंदोलन पर था और ये मैंने कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से किया था। और उसके बाद के जीवन में मैं एकेडमिक लाइफ और साथ साथ में ह्यूमन राइट्स मूवमेंट, मतलब दोनों को कंबाइन करके काम करती रही हूँ।
ये जो धमकी वाला सिलसिला है मैम, ये एग्जैक्टली कब से शुरू हुआ?
ऐसा हुआ है कि कुछ तकरीबन 12:30 बज रहा था और मैंने देखा कि एक बोलेरो और कुछ बाइक्स हमारे घर के सामने में ही पे आके वो रुकी। तो मैं एक्चुअली बाहर ही थी, मेरी जो सोमारी है वो भी मेरे साथ थी। तो उस जीप में से कुछ लोग जो उतरे, उसमें से 2 युवक लोग हैंडपंप के पास पानी पीने आए। तो सोमारी उनके पीछे, मतलब वो जैसे वो स्ट्रेंजर्स को देखती है तो चिल्ला रही थी। सो यू नो आई हैड जस्ट गॉन देयर एंड आई वाज टेलिंग देम कि डोंट वरी, शी वोंट से करेगी। इस तरह से मैं वहां गई तो वो लड़का मुझे बोलता है, ये क्या करेगी, मैं करूंगा। ही सेड, क्या आप क्या करेंगे? तो ही सेड काट देंगे। फिर उन्होंने, मतलब उनको लगा कि मैंने उन्होंने देख लिया मुझे कि मैं वहां पे फोन के साथ थी और फोटो ले रही थी। तो वो लोग एकदम मेरे सीधे मेरे पर आने लगे और कहने लगे कि हाँ फोटो ले रही हो, लो लो इस तरह का। हाँ, और फिर मैं मतलब पीछे हटती रही, मैं अपने घर की तरफ जाती रही तो वो मेरे पीछे आते रहे और वो लोग मतलब पूरे घर के दरवाजे तक वो लोग रहे। मैं थोड़ी उनसे आगे थी इसलिए मैं आगे जाके मैंने अपना फोन रख दिया कहीं। और फिर वो जो लीडर था वो अपने 2 लोगों को बोला कि जाओ जाके मोबाइल लाओ इनका। वो गए भी अंदर देखने के लिए पर उनको मिला नहीं। और फिर वो उन्होंने शुरू कर दिया अपना आक्रमण, मतलब उन्होंने कहना शुरू कर दिया, हम इधर आए हैं, आपको अभी यहाँ से निकलना है।
अच्छा।
तो बोला कि ये बात हो चुकी है, ये कल ये निर्णय हो चुका है, मैं यहाँ से जाने वाली हूँ तो मुझे थोड़ा समय चाहिए। तो अभी तो मतलब कैसे जाएंगे आपके, मैं उनको कह रही थी आपके घर में भी कोई आके बोलेगा कि अब भी निकलो, आप कैसे निकल सकते हो? तो ये तो हमारे, मतलब मेरे मकान मालिक को भी थाना में भी बुलाया था, उनके लड़कों को भी बुलाया था, उनसे भी उन्होंने फिर मुझे बताया, बोला है मैं एक्सेप्ट की हूँ और हम लोग, मैं जाने वाली हूँ यहाँ से। तो इस तरह से ऐसे आई वॉज ट्राइंग टू रीजन विद देम, मगर उनका जो पूरा था ना बहुत ही भयाव टाइप का था, बहुत आक्रामक था और वो लोग सब काफी लोग थे और कह रहे थे नहीं ये गांव के लोग चाहते हैं आप यहाँ से निकलो।
ये थी बस्तर से मानवाधिकार कार्यकर्ता और शोधार्थी बेला भाटिया।
दिन भर शॉर्टवेव 41, 31 और 25 मीटर बैंड यानी 7,565, 7,600, 9,510, 11,995 किलोहर्ट्ज और मीडियम वेव 1,413 किलोहर्ट्ज पर।
और अब एक सवाल, चुनाव प्रचार में हजारों करोड़ रुपए लगा देने वाली राजनीतिक पार्टियों के पास आखिर इतना पैसा आता कहां से है? इस सवाल का कोई ठोस जवाब नहीं मिलता। सभी पार्टियां कहती हैं कि उन्हें चंदे में ये रकम मिलती है, पर नेशनल इलेक्शन वॉच और एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स यानी ADR ने कहा है कि पिछले 11 वर्षों में भारतीय राजनीतिक दलों की आय करीब 70% हिस्सा, यानी उनकी आय का 70% हिस्सा अज्ञात स्रोतों से आया है। मंगलवार को दिल्ली में जारी की गई एक रिपोर्ट में इस मामले में राजनीतिक दलों के साथ साथ पार्टियों को चंदा देने वालों पर भी सवाल उठाया गया है। सुनिए नितिन श्रीवास्तव की रिपोर्ट।
राजनीतिक दलों के चुनावी खर्चों और कार्यशैली पर नजर रखने वाली इन दोनों संस्थाओं ने जैसे ही आंकड़ों में बात शुरू की, पत्रकारों से खचाखच भरे हुए हॉल में सबके कलम और कैमरों के फ्लैश तेज होते गए। इनके आंकड़े छोटे मोटे भी नहीं है। एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स के प्रोफेसर त्रिलोचन सहाय को सुनिए।
2004 से लेकर आज तक और नेशनल और रीजनल पार्टीज दोनों को मिला के जो उन्होंने लिखित में इनकम टैक्स और इलेक्शन कमीशन को सौंपा है उसके अनुसार लगभग 11,300 करोड़ों का उनको इनकम मिला है और उसमें से 70% वो अज्ञात या अननोन सोर्स से है।
मौजूदा नियम ये कहते हैं कि राजनीतिक दलों को किसी भी व्यक्ति या संस्था से प्राप्त हुए 20,000 रुपयों से कम का स्रोत बताने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। पिछले कई वर्षों में जानकारों की राय ये रही है कि इस नियम में तुरंत बदलाव लाने की जरूरत है जिससे चुनावी खर्चों और राजनीतिक दलों के कामकाज में पारदर्शिता बढ़े। शायद यही वजह है कि इस रिपोर्ट के आंकड़े बेहद चौंकाने वाले हैं। मिसाल के तौर पर पिछले 11 सालों के दौरान कांग्रेस पार्टी की 3,323 करोड़ रुपए की आय अज्ञात स्रोतों से प्राप्त हुई जो पार्टी की कुल आय का 83% था, जबकि केंद्र में आसीन भारतीय जनता पार्टी को इसी दौरान कुल आय में से 65% यानी 2,125 करोड़ रुपए अज्ञात स्रोतों से मिले। ताजुब की बात यह भी रही है कि क्षेत्रीय दलों में भी ये कथित चलन धड़ल्ले से हो रहा है। समाजवादी पार्टी को ले लीजिए, रिपोर्ट के अनुसार समाजवादी पार्टी की कुल आय का 94% यानी 766 करोड़ से ज्यादा और शिरोमणि अकाली दल की कुल आय का 86% यानी 88 करोड़ रुपए की आय अज्ञात स्रोतों से बताई गई है। जब रिपोर्ट बनाने और जारी करने वालों से ये पूछा गया कि क्या ये सही नहीं है कि राजनीतिक दलों ने इस तरह की चुनौतियों से निपटने की भी सोची है, जवाब संस्था के जगदीप चोकर ने दिया।
देखिए, एक्शन कई लेवल्स पे होने की कोशिश हुई है, एक्शन हुआ भी है, लेकिन फिर जो एक्शन होता है उसको अंडू करने की भी उतनी ही कोशिश होती है पॉलिटिकल पार्टियों की तरफ से। तो ये जद्दोजहद जारी है। हम कुछ जैसे RTI में उनको ले आए थे, CIC में, उन्होंने उसमें रोड़ा अटका रखा है। तो पॉलिटिकल पार्टियां जो भी चुनाव सुधार होते हैं उनको वापस करने में लगी रहती है, ये दिक्कत।
बहरहाल, अभी हजारों और सैकड़ों करोड़ों की इस कथित अज्ञात स्रोत वाली आय पर राजनीतिक दलों का जवाब या बयान आना बाकी है, लेकिन पिछले कई वर्षों में ऐसी रिपोर्टों पर SY कुरेशी जैसे पूर्व चुनाव आयुक्त सिर्फ इसी किस्म की टिप्पणियां भर कर चुके हैं कि ये चलन तो गलत है ही। नितिन श्रीवास्तव, BBC दिल्ली।
ये थी नितिन श्रीवास्तव की रिपोर्ट। अब एक और सवाल, जीवन में सामान्य या नॉर्मल क्या है और हमारी नज़र में जो सामान्य नहीं है क्या उसे असामान्य मान लेना ठीक है? मनोवैज्ञानिक ज़्यादातर लोगों के व्यवहार को सामान्य व्यवहार मानते हैं, यानी मेजॉरिटी बिहेवियर उसको सामान्य व्यवहार माना जाता है। यही बात कद काठी पर भी लागू होती है। जिन लोगों का कद किसी कारण नहीं बढ़ पाता उन्हें समाज कभी अचरज की निगाह से देखता है तो कई बार हकारत से भी। पर छोटे कद के या बौने कहे जाने वाले लोगों में भी असीमित संभावनाएँ हो सकती हैं। असम का एक नौजवान ऐसे ही लोगों की प्रतिभा को नाटक के जरिए उभारने का प्रयास कर रहा है। पटना में सीटू तिवारी ने असम से आई कलाकारों की टीम से मुलाकात की। सुनिए ये रिपोर्ट।
गांव का आदमी लोग बोलते हैं, आपका जो लड़कियां है ना ऐसा सूटी करके जाता है, इधर उधर जाता है, ऐसा इतना दूर दूर कहाँ कहाँ जाता है, थिएटर नाटक वगैरह करके आता है। इसलिए कभी मेरा मामी के दिल में भी ऐसा होता है ना कि ऐसा सोचा मैंने।
39 साल की सेबरीना देमारी नाटक करती हैं। वो असम के एक नाट्य समूह दापोन द मिरर का हिस्सा हैं। ये एक ऐसा नाट्य समूह है जिसमें 22 कलाकार बौने हैं। सेबरीना भी बौनी है। उनकी माँ चाय बागान में काम करती हैं और सेबरीना खुद 2011 तक आंगनबाड़ी में काम करती थी, लेकिन आंगनबाड़ी में काम करने के बावजूद वो बौने होने की पीड़ा से उभर ना सकी। वो इस दर्द से तब उभरी जब उन्होंने नाटक करना शुरू किया। वो बताती हैं,
पहले हुआ था मैं अकेले है ना, क्या ऐसा भगवान ने हमको क्यों ऐसा बनाया ऐसा सोचा था, लेकिन अभी मैं थिएटर करने के बाद बहुत इज्जत मिला।
बौने लोगों का नाट्य समूह बनाने की शुरुआत 2008 से हो गई थी। नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा के छात्र रहे पवित्र राभा ने साल 2008 से 2011 तक असम के अलग अलग इलाकों में ऐसे लोगों की खोज की। इस दौरान उन्हें 70 ऐसे लोग मिले, लेकिन उनमें से महज 30 ही नाटक करने के लिए तैयार हुए। साल 2011 में असम के टांगला में इन 30 लोगों के साथ 45 दिन की वर्कशॉप हुई। मैरी कॉम, टेंगो चार्ली जैसी फिल्मों में काम कर चुके पवित्र राभा ने इस काम में आई मुश्किलों के बारे में हमें बताया।
मुझे परेशानी ये हुई थी कि लोगों को लगा था कि कौन है ये, क्यों, कैसा है, फिर सर्कस में तो लेके नहीं जाएगा, अब ऐसा क्यों करना चाह रहे, क्या स्वार्थ है इस आदमी के पीछे, ऐसा भी था। लोगों को समझाना पड़ता था, इन लोगों को भी, घर में भी।
आलम यह था कि टांगला में हो रही वर्कशॉप को देखने के लिए स्थानीय लोग छतों पर चढ़कर झांकते थे कि आखिर इतने सारे बौने अंदर क्या कर रहे हैं। बाद में इस नाट्य समूह ने अपना पहला शो टांगला में ही किया। इसके बाद तो ये ग्रुप देश के कई राज्यों सहित अमिताभ बच्चन के शो आज की रात है जिंदगी में अपना प्रदर्शन कर चुका है। अमिताभ बच्चन से अपनी मुलाकात को याद कर रहे हैं कलाकार गणेश बासुमुत्र।
जब सर ने उमता भूषण के साथ स्टेज पे गाया था ना, उस समय में पूरा मेरे आंखें से सुखू पानी निकलने लगा। मैं तो खो गया था, हमारे दिल में घुस के धक धक करने लगा।
बौने लोगों को इस सफर में प्रोफेशनल सफलता ही नहीं मिली बल्कि व्यक्तिगत जीवन भी बदल गया। आत्मविश्वास, खुशी तो सबके जीवन में आए, लेकिन 30 साल की तोरासोना मोहिलारी के लिए ये बहुत खास था। 12वीं पास तोरासोना को यही अपना जीवन साथी मिला। 2011 की वर्कशॉप में उनकी मुलाकात नयन डिगमारी से हुई। तोरासोना बताती है,
जो वर्कशॉप में हम आया था ना, थिएटर वर्कशॉप में, इसमें ये प्रेम हुआ। आगे पहले मैं पसंद नहीं किया, फिर ये जबरदस्ती के किया, इसलिए हो गया।
इस ग्रुप में 12 से 45 साल की उम्र के कलाकार हैं। इनमें से ज्यादातर कलाकार असम के उड़लगुरी जिले के जलाह गांव में रहते हैं। जलाह में 5 एकड़ जमीन पर बौने कद के लोगों की दुनिया बसी है। ये लोग खेती करके, दुकान खोल के और दूसरे ऐसे काम करके अपना जीवन बसर कर रहे हैं। कई बौने कलाकारों को उनके परिवारों ने खुद से दूर भी कर दिया है। एक कलाकार ने अपनी पीड़ा साझा करते हुए कहा,
झूठ तो नहीं बोलूंगा, सच्चा बोलूंगा, आज इतना सा हमारे यहाँ इतना दिन हो गए, माँ ने फोन नहीं किया।
इन सब के बीच 20 साल की तुलिका दास जैसे खुशकिस्मत लोग भी हैं। ग्रेजुएशन की पढ़ाई कर रही तुलिका का सपना है कि वो फिल्मों में एक्टिंग करें और इसके लिए उसके घर वाले भी उसको उत्साहित करते रहते हैं।
कॉलेज मैं पढ़ते सकते सम्मान करे और बहुते मरम करे और सबके कॉलेज खान लड़के दादा बैदेव और लगर बो बहुत भल पाए और मैं इबार सीरियल करिसो
प्रतिदिन तुमि दिया।
इसी समूह में मेरी मुलाकात 12 साल के पृथ्वीराज राभा से हुई जो 5वीं में पढ़ते हैं। बात करने में शर्मीले लेकिन उनकी आवाज में ये असमिया प्रेम गीत सुनिए जिसमें वो कह रहे हैं, तुम मुझे जो फूल देती हो उसमें सुख दुख सब कुछ है, मैं उस भावना के साथ ही आकाश में उड़ना चाहता हूँ, समुद्र के तल में जाना चाहता हूँ। सीटू तिवारी, बीबीसी, पटना।
इस रिपोर्ट पर हमें आपकी प्रतिक्रिया का इंतजार रहेगा। और अब समय है खेल समाचारों का। राखी शर्मा तैयार हैं, लेकिन राखी आपके पास सिर्फ 45 सेकंड से भी कम है।
बिल्कुल, ऑस्ट्रेलियन ओपन की खबर ले लेते हैं। ऑस्ट्रेलियन ओपन के मिक्स डबल्स के क्वार्टर फाइनल मुकाबले में दो भारतीय खिलाड़ी आमने सामने होंगे। मिक्स डबल्स में भारत की सानिया मिर्जा अपनी जोड़ीदार इवान डॉडिच के साथ एक और अन्य भारतीय खिलाड़ी रोहन बोपन्ना और उनके जोड़ीदार गैब्रियला डेब्रोस्की के सामने होंगे। बोपन्ना और गैब्रियला की जोड़ी ने 5वीं वरीयता प्राप्त युंग जान चान और लुकास कुबोत को 6-4, 5-7, 10-3 से शिकस्त दी। दूसरी तरफ सानिया और डॉडिच ने भी अपना मुकाबला दूसरी वरीयता प्राप्त जोड़ी सिसई झेंग और अलेक्जेंडर पेया के खिलाफ 2-6, 6-3, 10-6 से जीता। ऑस्ट्रेलियन ओपन में अब कम से कम एक भारतीय का मिक्स डबल्स के सेमीफाइनल में पहुंचना तय लग रहा है।
बहुत बहुत शुक्रिया राखी। और अब कार्यक्रम समाप्ति से पहले चलते चलते एक नजर सुर्खियों पर।
बीबीसी समाचार। अभी अभी मिल रही खबरों के अनुसार इसराइल के रक्षा मंत्रालय ने वेस्ट बैंक के कब्जे वाले इलाके में 2,500 नए घर बनाने की योजना को मंजूरी देने की घोषणा की है। रक्षा मंत्री एविगदोर लिबरमैन ने कहा है कि प्रधानमंत्री बेन्यामिन नेतन्याहू और वो इसका समर्थन करते हैं। डोनाल्ड ट्रंप प्रशासन के दक्षिणी चीन सागर में अंतर्राष्ट्रीय इलाकों को अमरीका की सुरक्षा देने के बयान के बाद चीन ने कहा है कि वो इस इलाके में अपना अधिकार हासिल करने से पीछे नहीं हटेगा। ब्रिटेन की सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि ब्रिटेन के यूरोपियन यूनियन से बाहर निकलने की प्रक्रिया शुरू करने से पहले इस मामले में संसद में मतदान होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में सरकार की अपील को खारिज कर दिया है। बीबीसी समाचार।
तो ये थे समाचार। एक लंबे अरसे के बाद आपसे मैं मुखातिब हुआ आप कार्यक्रम को लेकर के। सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। खबरें खेल की हों, राजनीति की या देश दुनिया की, आप हमारी वेबसाइट bbchindi.com पर आएं, आपको सब कुछ मिलेगा। फिलहाल दिन भर में इतना ही। कार्यक्रम का तकनीकी पक्ष संभाला तिलक राज भाटिया ने। सभी साथियों की ओर से राजेश जोशी को अनुमति दीजिए। नमस्कार, अगली मुलाकात कल सुबह 6:30 बजे।